نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير amazed by الأسماء الحسنى اس سیریز میں سے آج ہم بہت ہی خوبصورت نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا الباری کریں گے اس سے پیچھے ہم نے الخالق کیا آج الباری ہے اور اس سے اگلا نام المصور ہے جیسے کہ ہم نے پچھلے نام کے آغاز میں بھی یہ دیکھ لیا تھا کہ یہ تین نام آتے بھی اکٹھے ہیں اور یہ ملتے جلتے بھی ہیں اور یہ ایک دوسرے کو ریپلیس بھی کرتے ہیں الگ سے آ جائیں تو تینوں کا ایک ہی معنی ہے لیکن اگر یہ مختلف طریقے سے آئیں الگ الگ جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں تو پھر ہمیں ان سب کی الگ سے الگ چیزیں دکھتی ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی کہ جس کو ہم اپنے دل دماغ میں پوری طرح سے پھرو ہی نہیں سکتے ہم پوری کوشش کے باوجود بھی بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم تیری وہ ثنا بیان نہ کر سکے جو کہ تیری ثنا کا حق تھا لیکن ہم اپنی سی کوشش کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ الباری کیا ہے پہلی بات یہ کہ رب لفظ کو بعض دفعہ فتوب الی باریکم میں لوگ میسٹ اپ کر دیتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو لفظ رب بہت کامن ہے اور اسی نام کے دوسرے طریقے سے اگر آپ سے بنا لیں تو الباری ہے یعنی فرق یہ بتانے لگی ہوں کہ وہی لفظ را کو پہلے با کو بعد میں کر دیں اور اسی طرح سے 19-20 سے بدل دیجئے تو وہ بالکل ایک مختلف نام بن جاتا ہے اور اس کے برعکس آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیا خوبصورت طریقے سے باری ہے تو لفظ الباری اگر ہم اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف دیکھیں تو لفظ الباری برع سے ہے اس کے مختلف معنی ہمیں سمجھ میں آتے ہیں مثلا جان ڈالنے والا یعنی اگر اس کے آسان اردو معنی لیں کیونکہ بعض دفعہ ہم سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جب الخالق جو پڑھ لیا تو پھر الباری کی کیا ضرورت تھی اور سو آن تو جان ڈالنے والا اس کے برعکس خالق کون تھا پلان کرنے والا کہ اس میں جان ڈالنی ہے کہ نہیں ڈالنی تو اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرتے ہیں پہلے اس کی تقدیر کرتے ہیں یعنی اس کی پہلے پلاننگ کرتے ہیں اور پھر الباری کیا ہے کہ وہ کام ہو جاتا ہے بس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الخالق لفظ میں کیا تھا کہ اس بچے کو زندہ پیدا کرنا ہے یہ گائے کا بچہ یہ بھینس کا بچہ یہ اونٹنی کا بچہ یہ ماں کے پیٹ سے زندہ آئے گا یہ پلان تھا یہ تخلیق تھی یہ خلق تھی اس میں تقدیر ہے اور ایک جملہ آج بار بار بول دیتی ہوں شاید یاد ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نام الخالق میں تقدیر ہے جبکہ الباری میں تنفیذ ہے نفاذ ہو جاتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں نا شریعت نافذ کیجئے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ایک پلانس جو اللہ نے بنائے جب ان کو نافذ کر دیا جاتا ہے تو پھر اس میں تنفیذ کا معنی آ جاتا ہے تو گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ جان ڈالنے والا اللہ تعالیٰ ہے الباری کے روپ میں جو ماں کے جسم اور ہر فیمیل کے جسم میں پلنے والے بچے میں روح ڈال دیتے ہیں اور یہ گویا کہ اس بات کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے جو سوچا تھا وہ کام کر لیا ذرا سا سوچئے کیا آپ کو مجھے اللہ کی ضرورت ہے الباری ہونے کی صورت میں کتنی ہی پریگننٹ خواتین اور کتنی ہی مادائیں ہیں کہ جو اس تمنا میں اتنی مشکل سہ لیتی ہیں کہ کوئی بات نہیں جب بچہ ہاتھوں میں آئے گا تو سب درد بھول جائیں گے اتنے دردوں کے بعد ایک بچہ کیا حاصل ہوتا ہے ایسے لگتا ہے کہ سونے کا کنگرا مل گیا تو آج سے آپ نے الباری کو دیکھنا ہے اور پھر جب اپنے بچوں کو دیکھے پیدا ہوتے بچے کو پوتے کو نواسے کو جو بھی آپ کے چھوٹے بڑے بچے ہوتے ہیں جب ان کی پیدائش کی خبر ملے بچہ زندہ ہے اس نے سانس لیا اس نے آواز دی وہ رویا تو کہیے گا الباری تیرا شکریہ تو نے مجھے ایک زندہ بچہ دیا کتنی عورتیں ہیں جن کے بچے ہوتے ہیں پیدا لیکن اسٹل بورن بیبی کئی بچے ماں کے پیٹ میں دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ذات سے اچھی امیدیں رکھیے اور دعا کیجئے کہ اللہ مردو دلوں میں بھی جان ڈال دے اب امن کا نہ مئی تنفا یہی نہ ہو سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا تو جان ڈالنے والا الباری ہے اسی طرح اس کا ایک اردو میں آسان سا اگر لفظ کہہ دیں عدم سے وجود میں لانے والا عدم سے وجود کیا ہے کہ کوئی چیز نہیں تھی اور وہ ہو گئی یاد رکھیے جو چیز بھی عدم سے وجود میں آتی ہے وہ پہلے تقدیر کی محتاج ہوتی ہے پھر تقدیر کے موافق ایجاد کی محتاج ہے یہ ایجاد کا معنی الباری میں ہے اور پھر اس کے بعد اس کی تصویر کی ضرورت پڑتی ہے तो अल्लाह ताला की ज़ात कौन है जो अदम से वजूद में लाती है। हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसका कोई मटेरियल है, प्लास्टिक है, शीशा है, कपड़ा है, रबड़ है, आयरन है, हर चीज़ किसी ना किसी मैटर से बनती है ना, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, एयर की फॉर्म में हो, गैस की शक्ल में हो। अल बारी वो है जो कुछ ना से सब कुछ बना ले। जी, वो ज़ात जहाँ कुछ नहीं था और उसने बना दिया, प्लान कर लिया, इरादा किया और अब उसको बिल्कुल सामने रखा। आप कह सकते हैं प्लान को हकीकत में बदलने वाला कहाँ था इंसान। सूरह दहर याद कीजिए, हल अताल अल इंसानी हीनु मिन दहरी लम यकुन शय्यम मस्कूरा। क्या इंसान पर ज़माने का वो दौर नहीं गुज़रा कि वो कोई काबिले ज़िक्र चीज़ ना था। आपके घर में अगर 3 साल का कोई बेबी है, बच्चा है, छोटा सा फिर्रा गुमरा, ये 4 साल पहले कहाँ था? इसका तो वजूद भी नहीं था। अल बारी ने बगैर किसी चीज़ के अदम से वजूद में एक बच्चे को ला के खड़ा कर दिया और आपके मेरे हाथों में मासूम नन्हे मुन्ने रुई के गालों की तरह के बच्चे आ जाते हैं। ये अल बारी का काम है। हम तो मटेरियल ही जमा करते रहे, घर बनाना है मटेरियल नहीं मिल रहा, खाना बनाना है टमाटर नहीं मिल रहे और आलू प्याज नहीं है, कैसे हंडिया बने, चावल पकाने हैं चावल कोई नहीं, अल्लाह को कोई परवाह नहीं। आज आप देखिए कि इंसान के जिस्म में कितना कुछ है, हर वो चीज़ जो मट्टी में, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, पानी, क्या कुछ है, क्या माँ के पेट में ये सब डाला था तो एक बेबी बना था? अल बारी ने पानी के कतरे को कैसे खूबसूरत हंसती, बोलती, रोती, मुस्कुराती और बिला वजह हंसती भी एक खूबसूरत सी तस्वीर में बदल दिया, अदम से वजूद में लाने वाला। और इसी तरह एक दिन हम नहीं रहेंगे। मासूम बच्चों को देखकर अल बारी को याद किया करें कि कैसे वो अल्लाह ताला की कुदरत की एक निशानी बनकर आपके मेरे सामने आ जाते हैं और हम कभी उसके बारे में सोचते नहीं। बच्चों के बारे में हमेशा शिकवे, झगड़े, रोता है, शोर करता है, खाना नहीं खाता, इसके पेट में ये, आप उस मासूम से बातें तो करें, वो आपकी बातें सुनने लगेगा ना तो रोना वो भी भूल जाएगा। आप कहेंगे कि अच्छा, मुझे अल्लाह ने इतना प्यारा बेबी दिया है। तो अपने छोटे छोटे मासूम गुड्डे गुड़ियों जैसे बच्चों को अगर आप देखें, हम अपने प्यार से कहते हैं ये गुड़िया है, ये गुड्डा है, नहीं, गुड़िया और गुड्डे की क्या बात है कि ये तो कुछ ना से बहुत कुछ बन गया। और आपको तारीफ याद आ जाएगी, कुछ ना से कुछ बनाने वाला। फिर इसी तरह अल बारी के लफ्ज़ का अगर आप तीसरा एक और एंगल देखिए, एक ही जैसी मखलूक को मुख्तलिफ तरह का बनाने वाला, अल्लाह अकबर कबीरा, इंसान की अकल बंद हो जाती है, गुम हो जाती है। आज तकरीबन दुनिया की आबादी 20 बिलियन के मुताबिक, कम हो या ज़्यादा, मुसलमान देख लीजिए, एक इंसान दूसरे से मिलता नहीं मिलता, कद में देखिए, काट में देखिए, इवन आइडेंटिकल ट्विन्स, वो इंसान, वो बच्चे जो एक माँ के पेट में इकट्ठे रहते हैं, वो भी बुरे एक जैसे नहीं, कुछ भी ना हो, शक्ल पूरी एक जैसी, रोने का फ़र्क, आदतों का फ़र्क। तो अलबारी के लफ्ज़ में एक चीज़ है कि एक ही मखलूक को मुख्तलिफ तरह का बनाता है। आपको था कि ज़ीब्रा, उसके ऊपर लाइनें होती हैं ना, हमें सारे ज़ीब्राज एक जैसे लगते हैं, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट, लेकिन ज़ीब्रा बच्चा जो होता है ना, वो अपनी माँ को उसकी स्ट्राइप्स के साथ पहचानता है। आपको सारी एक जैसी लगती है, उसको पता है नहीं ये वाइट वाली चौड़ी है, ब्लैक पतली है, नहीं मेरे माँ के पेट पे तो पता नहीं 10 स्ट्राइप्स हैं, हमें सब एक जैसे लगते हैं, अकल बंद हो जाती है। अल्लाह ताला इंसान को इस तरह मुख्तलिफ शक्लों में, फिर सिर्फ शक्ल नहीं, नाक देखिए, रंग देखिए, शक्ल देखिए, फिर कद देखिए, आप दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जाइए, आपको शक्लों से पता चलता है ये चाइनीज़ है, आप कहते हैं ये इंडोनेशियंस हैं, ये मलेशियंस हैं। अब मैं यूरोप में रहती हूँ, आप यकीन करें कि सिर्फ आप 2 दिन के अंदर यूरोप के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे जाइए, आप यूके से निकलें तो आप आयरलैंड चले जाएं, आयरलैंड से निकलें तो आप पेरिस आ जाएं, पेरिस से आप इधर नॉर्वे आ जाएं, सब के फीचर्स फ़र्क। हम तो एक ही बात कहते हैं, ये गोरे हैं। आप जानते हैं कि जो जर्मन्स हैं उनकी शक्लों के, उनके फीचर्स में क्या तिखापन है, इसके बरक्स आप नॉर्वेजियन लोगों को देखिए तो रेड, फ्लफी, सॉफ्ट से, ये अलबारी का कमाल है। क्या खूबसूरत चीज़ों से पता ही नहीं चलता। फिर आप देखिए कि इंसान के हाथ, सबके हाथ एक जैसे हैं, अगर 20 बिलियन इंसान है तो हाथ तो 40 हो गए ना, उससे भी डबल है, कुछ नहीं मिलता, स्किन कलर फ़र्क है, इंसान के अंदर इतनी मुख्तलिफ वैरायटी पैदा करने वाला। और मैं सोचती हूँ कि एक माँ के 4 बच्चे हैं, तो अगर आप पूरी दुनिया के इंसानों को जमा करके देखिए तो अलबारी के अंदर एक ही जैसी मखलूक को मुख्तलिफ तरह का बनाने वाला, प्यार आ रहा है। अल्लाह पे। और मैं सोच रही थी जब ये पढ़ रही थी तो मैं अपने तौर पे एंजॉय कर रही थी, कितना मज़ा आता, सब एक ही जैसे होते, मज़ा कोई नहीं था ना। किसी और के बच्चे को माँ खाना खिला के अपने बच्चे को भूखा छोड़ देती, गुस्सा किसी पे आया होता थप्पड़ जाके दूसरे को मार देती है। ये अल्लाह की शान है, उसने वैरायटी दी है, तो उससे ताल्लुक़ को महसूस कीजिए। फिर इसके बाद अल्लाह ताला के नाम अल बारी की एक और सिफत हमें मिलती है, और वो क्या है, बीमारियों को, जख्मों को खुद ब खुद दूर करने वाला। बीमारी होती है खुद ब खुद दूर हो जाती है, जख्म आते हैं छोड़ दीजिए उसके हाल पे, 2-4 दिन के अंदर खरीद आ जाएगा जी। और ये सारे डिक्शनरी में मानी है बात, बोझल ना, वरना मैं आपको इन सब के डिफरेंट अबवाब में जब चला जाता है ना, बस बारा आ बारा हमजा इसका रूट है। और आप देखेंगे कि बारा हमजा को जब आप इस एंगल में पढ़ते हैं ना, तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाता है कि ये लफ्ज़ जो है ये अल्लाह ताला ने सिर्फ अल बारी के अंदर, इसके तकरीबन मैं आपको आज 5 मुख्तलिफ इम्प्लीमेंटेशंस दे रही हूँ कि जिसमें आपको अल्लाह ताला की ये खूबी नजर आएगी। क्या पता चला कि बीमारियों को खुद ब खुद दूर करने वाला, ये कैसे? आप देखिए कि जख्म होता है ना, हड्डी टूटती है, छोड़ दीजिए उसको उसकी जगह पे, छेड़े ना खुद ब खुद जुड़ जाएगी। हाँ? बीमारी आ गई, युबरियो का मानी है ये, असल में अगर डिक्शनरी को देखो ना तो युबरियो और उबरियो लख महा, आप क्या आगे पढ़ेंगे हजरत ईसा अलैहि सलाम के बारे में, तो अल्लाह ताला की जात क्या है कि वो जिस्म पे बहुत सारी चीजें, कहाँ सबके नसीब में डॉक्टर, और अल्लाह ना करे कि बहुत सारे लोग अपना वक्त इन्हीं चीजों पे लगा दें, तो हमारे अंदर की कई चीजें खुद ही ठीक होती हैं। एक दफ़ा डॉक्टर स्कैन करते हैं कहते हैं ये गिल्टी है, अगली दफ़ा करेंगे कहेंगे है ही कोई नहीं है, तो अल्लाह ताला खुद ब खुद आपके जख्म भर देता है। आप घर बनाते हैं, आपको मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, आप कहते हैं नहीं कुछ अरसे के बाद पेंट करना पड़ेगा, कुछ अरसे के बाद यहाँ फिर दोबारा टाइल्स को फिक्स करना पड़ेगा। अलबारी आपके मेरे जिस्म के अंदर होने वाली बीमारियाँ और जरासीम उनको खुद ही मेंटेन करता है, वरना हमें एक एक बंदा अपने ऊपर रखना पड़ता। फुल टाइम डॉक्टर होते हैं, बाहर की दुनिया में तो लोगों को डॉक्टर मिल जाते हैं, लेकिन आप देखिए कि आज भी कोई आसान काम थोड़ी है डॉक्टर्स के पास जाना। फिर इसी तरह से आप देखिए कि हमारे बाल टूटते हैं फिर बाल आ जाते हैं, पलकें गिरती हैं फिर पलकें आ जाती है, सर्दियों में स्किन खुश्क होती है फिर ऊपर छाल बनती है फिर आती है, ये आपका अलबारी है जो आपके जिस्म को रेनोवेट करता रहता है। हकीकत में अल्लाह ताला आपके मेरे बहुत सारे काम तो खुद ही करवा रहा है, खुद करता है या करवाता है, क्योंकि उसने आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ों को रखा हुआ है। फिर आप देखिए कि बस दफ़ा कई बीमारियों पे डॉक्टर खुद कहते हैं लीव इट, जैसे आजकल कोरोना के दिन हैं तो लोग क्या कहते हैं, कोरोना के मरीज़ को अलग कर दें, आइसोलेट कर दें, 14 डेज का सर्कल है उसके बाद ठीक हो जाएगा। इसी तरह नज़ले ज़ुकाम के बारे में लोग कहते हैं दवा खा लो तो भी 7 दिन, और अगर दवा ना खाओ तो 1 हफ्ते में तो ठीक हो ही जाएगा, मतलब ये कि दोनों ही तरह ठीक होगा। तो बहुत सारी दवाइयाँ खाने की बजाय अलबारी पे ट्रस्ट कीजिए कि वो खुद आपके जख्मों को भरेगा। और कितने ही जख्म है आज दुनिया में, लोगों के दिए हुए, कभी इंसानों की बातों के जख्म, कभी कुछ, अलबारी क्या खूबसूरत तरीके से आपके वो जख्म भरता है, ये तो एक अलग ही मानी है। फिर आगे देखिए कि मंसूबे को हकीकत में बदलने वाला, जैसे हमने पीछे भी बात की थी कि जब भी आप कोई घर बनाना चाहते हैं, कोई काम करते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, पहले पूरा प्लान करते हैं। जैसे आपके ये डिफरेंट कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, आप यकीन करें जबर जेर लिखी जाती है, हर दिन की बात, कब शुरू कब ख़त्म, कितने बजे कितनी ऑडियो कितनी मीटिंग कब टेस्ट कब, ये ना करें तो कैसे हो सकता है आप 9-10 महीने में कुरान पूरा कर लें और एक फसल कैसे तैयार हो। अल्लाह के अल खालिक नाम के अंदर मनसूबाबंदी थी, प्लानिंग थी, और अलबारी में हकीकत में रंग भरने वाला, प्लान को हकीकत बनने वाला, टू ब्रिंग इट आउट इन रियलिटी। जो तसव्वुर था, आप कोई जगह देखते हैं, लोग मॉडल दिखाते हैं आपको, ये है ऐसा घर होगा, इतने कमरे होंगे, ऐसा बाथरूम होगा, ये होगा, वो एक छोटा सा मॉडल दिखाते हैं, क्या आप उस मॉडल में रह सकते हैं? नहीं रह सकते, बल्कि आपको उसके अंदर मेहनत करनी पड़ती है। तो अलबारी जिस तरह का प्लान किसी मखलूक का किया, और याद रखिए इन सारे नामों को सिर्फ इंसान तक ना रखिए, वो क्या है, खालिकु कुल्ली शैइन, खलकल मौत वल हयाता, जिंदगी का मालिक, मौत का मालिक, हजर का, शजर का, साकिन का, चलने वाले का, हर चीज का मालिक, और कलम का मालिक। सबसे पहली मखलूक जो खालिक ने तख्लीक की वो कलम था, फिर उसको कहा उक्तुब लिख, और वो लिखता ही गया, और आपकी मेरी तकदीरें लिखी गईं, वो तकदीरें लिख कर अल्लाह ने रख दी, अपने पास कहीं गैब में आप दुनिया में हर बच्चा, हर जानवर, परिंदा, पौधा, कायनात की एक एक चीज उसके मुताबिक दुनिया के अंदर जब आ रही है तो वो कह लीजिए अलबारी का काम है। वो हकीकत में बहुत सारे अधूरे मनसूबों को पूरा करता है और हमें भी इन सब चीज़ों से अपने लिए अमल लेना चाहिए। क्या आप भी सिर्फ प्लान ना करते रहें, आप सिर्फ बातें ही ना करें, बल्कि अगर जितने नाम दिए अभी से अपनी लिस्ट जो आप साइड पे हमेशा नोट्स में बनाते हैं उसमें लिखते जाइए कि अल्लाह ताला अगर अदम से वजूद लाने वाले हैं तो आप भी कोई नए आइडियाज़ लाइए। ये मुजीद का मानी भी बनता है, नायाब चीज़ें पैदा करने वाला, तो आप भी तो अपना ब्रेन यूज़ कीजिए। आप क्यों लकीर के फ़कीर हैं, आप क्यों तकलीद के फंदे में, अपने आइडियाज़ लाइए। दूसरों की चीज़ें कॉपी करना, नकल करना उससे बेहतर अच्छी लाए, फिर आप देखिए एक ही जैसी मखलूक को मुख्तलिफ तरह से बनाने वाला है तो आप क्या कीजिए। अल्लाह ताला के इस सिफत पे, इस नाम के साथ ताल्लुक़ रखते हुए आप भी वैरायटी लाइए। अब रोज़ आप दाल चावल बना के बैठ जाएंगी तो बच्चे नाराज़ तो होंगे ना, और आप आज सब्ज़ी बनाई, कल दूसरी सब्ज़ी, परसों तीसरी, नहीं, अपने कामों में वैरायटी लाइए। आप एक बीवी हैं, आपका एक रूप होना चाहिए, आपके अंदर एक वैरायटी हो। क्या मर्द पहले से सोचे बैठा है कि घर जाऊंगा तो एक ऐसी बीवी बैठी होगी? बीवी तो नहीं बदलेगी, आप खुद को वैरायटी के साथ पेश कीजिए। और इसी तरह फिर बीमारियों को दूर करने वाला है, कुछ बीमारियां आप भी तो दूसरों की दूर कीजिए और जख्म आप भी भरिए। लोगों के दुखों के, तकलीफ़ों के जख्म दूर करें, जिस्मानी तौर पर भी उनकी हेल्प कीजिए, और फिर अपने अधूरे मनसूबों को हकीकत में बदलिए। और फिर एक बड़ा खूबसूरत मानी है, इतना प्यारा मानी है अल्लाह ताला के अलबारी होने का, और वो क्या है, खुद भी बरात करने वाला, पाक रहने वाला मुराद है, और दूसरों को भी बरी करने वाला। ये कौन है? अब देखिए इसको आप समझेंगे, बरात मिन अल्लाह, सूरत तौबा जिसका दूसरा नाम भी सूरत बरात ही है ना, बेजारी, बेनियाजी। अल्लाह सुबहाना ताला खुद भी पाक है, हर गलत चीज़ से, हर बुरी चीज़ से पाक है, और दूसरों को भी पाक करने वाला है। मुजम्मत से निजात दिलाता, लोगों की बातों से निजात दिलाता, और हकीकत यह है कि कुछ अल्लाह के नेक लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लग जाते हैं, अल्लाह सुबहान तआला उनकी बेगुनाही साबित करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से एक रिवायत है जो हम तक पहुँचती है, फरमाया वल्लज़ी फ़लक़ल हब्बा वबरअल नस्मा, कसम है उसकी जिसने दाने को फाड़ा और जिसने जान बनाई, मुराद के रुख पैदा की। तो अल्लाह सुबहान ताला किस तरीके से खुद भी बरी है, किस तरीके से इस चीज़ को रखता है, अगर आपने इसको समझना है तो याद कीजिए अल्लाह ताला ने किस किस की बेगुनाही साबित की। सूरत अल-अहज़ाब में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बेगुनाही को साबित करने का जिक्र है। हज़रत मूसा बहुत बाहया इंसान थे, कपड़े बहुत पहन ओढ़ कर रखते थे, उस दौर में लोग इतने बेहया थे कि उनको बिल्कुल इसकी होश नहीं थी, तो जब इनको बहुत ही ढका छुपा देखते कहते ज़रूर जिस्म पे कोई ऐब ही होगा, इसीलिए तो ये ऐसे फिरते हैं। तो अल्लाह ताला ने उसके लिए इसबाब पैदा किया, अलबारी इसबाब भी पैदा कर देते हैं। गुसल के लिए कपड़े उतारे और पत्थर पर रख कर जब पानी में गए तो पत्थर लुढ़कता लुढ़कता आ गए, और हज़रत मूसा पीछे पीछे या हजर उसौबी या हजर उसौबी, और ये कहते कहते आगे चले गए और लोगों ने मूसा को देख लिया तो तसल्ली हो गई कि नहीं मूसा वजीह है। अल्लाह कहते कान इंदल्लाही वजीहा। तो जब कभी अल्लाह के वो नेक बंदे जिन पर किसी हसद की वजह से, किसी और मनफी जज्बे की वजह से कोई इल्ज़ाम लग जाता है तो ये अलबारी है जो बेगुनाहों की बेगुनाहियों को पूरा करता है। कभी आप पे भी ऐसा हुआ? और अलबारी वो है जिसने हज़रत आयशा सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बरात साबित की। सूरत नूर खोलते ही आपको वाक़िया इफ़्क़ मिल जाता है, दूसरे ही रुकू में वल्लज़ीना जाओ बिल इफ़्क़। तो अल्लाह ताला वो है जो दूसरों के ऊपर लगे हुए इल्ज़ाम और धब्बों को दूर करता है, और इसी तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ऊपर इल्ज़ाम लगता है। अल्लाह ने भरी महफिल में बादशाह के सामने उन औरतों से बुलवा दिया कि यूसुफ़ सच्चे थे, और उस औरत ने अज़ीज़े मिस्र की बीवी ने भी कह दिया कि मैं ही ख़ताकार थी, यूसुफ तो सच्चे थे। तो ये सारी बेगुनाही की बातें अल्लाह ताला करवाता है, और बहुत सारी बातें। बुखारी का वाक़या, एक काले रंग की औरत ग़ुलाम थी एक कबीले में, तो थी सच्ची लेकिन उस पर झूठा इल्ज़ाम लग गया, कबीले के मालिक का किसी का हार गुम गया, लोगों ने समझा इसने चुराया होगा, हालांकि उसने नहीं चुराया था। तो उसने अपनी ज़ुबान में बात की, हालांकि देखिए कुफर पे लेकिन अल्लाह को तो मानते हैं ना, कहने लगी कि रब अगर तू मेरी बेगुनाही साबित करा दे मैं इन लोगों को छोड़ दूंगी। और फिर क्या था, अल्लाह ताला ना सुने, मैं युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाअहू, सबके सामने एक चील आई और उसने बुखार नीचे फेंका जिसको वो गोश्त का टुकड़ा समझ के ले जा चुकी थी। लोग शर्मसार हैं, शर्मिंदा हैं, कहने लगे कि औरत हमें माफ़ कर दे। उसने कहा, माफ़ करने की कोई बात नहीं, मुझे आज़ाद कर दो। मेरा दिल खट्टा हो गया, कहा तुम जाओ आज़ाद हो। सर पे पोटली लिए वो एक औरत इधर से उधर मदीना की तरफ आती है। कहाँ जाऊँ जब किसी जगह इल्ज़ाम लगते हैं, और वो भी अपनों की तरफ से और झूठे इल्ज़ाम, तो याद रखिए दिल खट्टे हो जाते हैं। और इस तरह वो औरत जब मसीह नबी के करीब आई, अल्लाह के नबी से मुलाकात हुई, बात चली, आपने उसको एक छोटा सा हुजरा बनवा दिया जो अज़वाजे मुतहरात के हुजरों के साथ था। और फिर वो औरत मस्जिद की सफाई करती और फारिग वक्त में अल्लाह के नबी के अजवाज के साथ बैठकर एक शेर पढ़ा करती थी कि वो हार की चोरी का दिन भी मेरे रब की कुदरतों का एक कुदरत का इजहार था कि जो मुझे कुफर और शिर्क के अंधेरों से निकाल कर इस्लाम की रोशनी में ले आया। हज़रत आयशा कहती है कि हम पूछा करते कि अम्मा ये कौन सा हार और कौन सी बात है, तो उस पर ये वाक़ जो मैंने अभी आपको सुनाया है, ये आपको वाक़ सही बुखारी में मिल सकता। तो ये अलबारी था जिसने एक उकाब के ज़रिए से एक औरत जो चाहे काफिर, कोई बात नहीं, इतनी रौनत की ज़रूरत नहीं होती, अल्लाह सच्चे बंदे का साथ देता है चाहे वो मुसलमान हो या काफिर हो। और इस तरह फिर अलबारी ने उस औरत को कहाँ रखा, अल्लाह के नबी ने उसके फौत होने के बाद उसकी कब्र पे जाकर उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ी, लोगों ने ऐसे ही दफन कर दिया। आपने कहा कैसे, फिर आपने जाके उसके लिए दुआ की। तो अपनी ज़िंदगी का कोई वाक़या याद कीजिए जब आप पे कोई इल्ज़ाम लगा हो, जब कोई आपके बारे में किसी ने कुछ कहा, गम न किया करें, बहुत सफाइयाँ ना पेश किया करें। एक तो हमारे कल्चर में सफाइयाँ पेश करने का बड़ा रिवाज है। मैंने जो चीज़ बाहर की दुनिया में आने के बाद सीखी वो ये है, ठीक है जी आप जो भी कह लें, ख़त्म, बात ही ख़त्म, रोना धोना, फ़ोन पे आधी बात, ये अल्लाह की कसम मैंने नहीं किया, अल्लाह मैंने ये नहीं, मेरा मतलब ये नहीं। भाई क्यों बंदों की मोहताजी और ग़ुलामी में आते हो, अलबारी को कह दिया करे चुपके चुपके। और आपको पता है कि अलबारी ने किसकी बेगुनाही साबित की, वो प्यारी सी मरियम बेगुनाह औरत जिसके ऊपर इल्ज़ाम क्या लगता है। और अल्लाह ताला कहते हैं कि मरियम जब बच्चे को लेके जाओगी बस कह देना कि इन्नी सुमतुले रहमानी सौमा, मैंने तो रहमान के लिए आज एक रोज़े की नियत की है, बस मुझे और कोई पता नहीं है। और अल्लाह ताला ने उस औरत की बेगुनाही को साबित करने के लिए एक बच्चे को बुलवा दिया कि इन्नी अब्दुल्ला, मैं अब्दुल्ला हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। हज़रत ईसा का बोलना, अलबारी का वो अपनी माँ के लिए बेगुनाही साबित करवाना था। तो बहुत ना बोला करें, खामोश रहें। अगर आप अपने दिल से कह देना कि मैं सच्ची हूँ कि झूठी, तो फिर चर चर करके आपको क्यों ज़रूरत है अपने आप को सच्चा करने की, सारी दुनिया के सामने आप सच्चे हो जाएंगे, अकेले में आपका मन आपको बुरा कहेगा। वो ज़मीर, वो नफ्से लवामा, जिसको अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि इस्तफ़तिक़ क़ल्बक वलहू अफ़तूक, अपने बारे में खुद पूछो तुम क्या हो। तो याद रखिए कि अल्लाह ताला ने सूरत क़यामत में जो नफ्से लवामा की कसम खा के कह दिया कि ये है बलिल इंसान वाला नफ्स ही बसीरा, इंसान तो अपने नफ्स को खूब जानने वाला है, वलहू अल्क़ा मअज़ीरा, ये तो इंसान की कमज़ोरी है ना। तो इसलिए जितना ज़्यादा आप अल्लाह ताला के इस नाम के साथ ताल्लुक़ महसूस करेंगे, आपने मैंने भी इस नाम से फिर अमल की एक बात लेनी है, आप भी दूसरों की बेगुनाही साबित किया करें। ऐसा शख्स गूंगा शैतान है जिसके सामने किसी की इज्जत पे हर्फ आ रहा और वो चुप करके बैठा रहे। ऐसे दोस्तों से तो दुश्मन भले, तो दूसरों की बेगुनाही साबित करे। आज हम झूठी कस्में खा लेते, सच्ची गवाही नहीं देते, खामखा पुलिस आएगी ये होगा, तो दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना तो बड़ी बात है। जिसका कसूर है उसकी बात कीजिए, दूसरे को बरी कीजिए। और याद रखिए जिसने किसी बंदे की गैर मौजूदगी में उसकी बात की, अल्लाह सुबहान तआला तब जबकि उसको ज़रूरत होगी उस वक्त उसकी बात करेगा। और इंशाल्लाह ऐसा ही बंदा जो है वो फिर अल्लाह ताला के नज़रों में बहुत बड़ा बनेगा। तो अल्लाह ताला ने ये सब कुछ किया। खुलासा करते हैं, जान डालने वाला, अदम से वजूद में लाने वाला, एक ही जैसी मखलूक को मुख्तलिफ किस्म का बनाने वाला, बीमारियों को खुद बखुद दूर करने वाला, मंसूबे को हकीकत में बदलने वाला, खुद भी पाक है और दूसरों को भी पाक करने वाला, ये है अलबारी। तो याद रखिए तीन नाम, अलखालिक, वही अलखालिक, वही अलबारी और वही अलमुसव्विर है। दुनिया में तो नक्शा बनाने वाला कोई और, फिर ईंटें ढोने वाले कोई और, फिर फिनिशिंग टच देने वाले कोई और हैं, लेकिन अल्लाह ताला कौन है, वही अलखालिक, वही अलबारी, वही अलमुसव्विर। हम एक लफ्ज़ बोल देते हैं ऑलराउंडर, कोई ऑलराउंडर नहीं है, हरफन मौला कहना भी नहीं चाहिए, कोई हरफन मौला नहीं होता। डॉक्टर जो है वो कभी इंजीनियर नहीं होगा, और जो इंजीनियर है वो कभी गोश्त बेचना नहीं जानेगा। दुनिया में अल्लाह ने मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें देकर मुतमईन कर दिया है, और अल्लाह ताला की ज़ात कितने उसके रंग और उसके कितने रूप है। और अब चलिए अलबारी का एक और बड़ा ही खूबसूरत मानी लीजिए। पहले हस्म हो गए पाँच, छठा मानी छठी इसकी मुख्तलिफ फॉर्म, और वो क्या है, हर चीज़ को जिस मकसद के लिए बनाया फिर इसको उसके काबिल भी बना दिया। जी, अल्लाह सुबहान तआला का नाम अलबारी ये बताता है, आप इसको अबरा के मानों में देखे ना, अबरा किसी चीज़ को जिस मकसद के लिए, जिस गर्ज़ो गायत के लिए बनाया जाए या जो लायक था वो उस काबिल भी हो। मसलन आप देखिए पानी, पानी क्या है, अल्लाह ने बनाया, पानी की गर्ज़ो गायत क्या है, प्यास बुझाए, हलक छिल गया पानी पिए, जाइए सूरत फातिर की आयत 12 खोल कर देख लीजिए, वक्त नहीं है वरना आपको एक एक आयत खोल के बताऊं, बाद में आप जाकर देखिए। अल्लाह कहता है हाजा हसबुन व हाजा फुरात, पानी को अगर अल्लाह ने पैदा किया तो उसका मकसद तख्लीक था प्यास बुझाना, तो पानी में ये कैफियत भी रखी। पता चला कि पानी बना दिया अल्लाह ने, लेकिन पानी के अंदर जो कैफियत डालनी थी प्यास बुझाने की वो नहीं, बल्कि पानी पीते ही और गला खुश्क होने लगा। ये है अलबारी, वो आपके मेरे लिए ये सारे काम करने वाला है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि अल्लाह ताला ने सितारे बनाए, सितारों का मकसद है वह बिन नजमी यहतदून, रास्ते दिखाए जाते हैं, रुजू मल शयातीन, सितारों के जरिए शयातीन भगाए जाते हैं, और ज़य्यन समात दुनिया। सूरत मुल्क में देख लीजिए और सूरत नहल की आयत 15-16 खोल लें, आपको सितारों के मकसद समझ आ जाएंगे। पहाड़ क्यों बनाए, जमीन को थाम लें, पहाड़ मेघों की तरह डाल दिए, अल्लाह ताला ने आपके मेरे लिए ये सारी चीज़ें बनाई, फिर उनसे काम भी ये लिया, पता चला पहाड़ हिलने लगे तो मकसद तो हासिल ना हुआ। तो गोया के अलबारी वो है चीज़ों को जिस मकसद के लिए बनाए फिर उनसे वो काम भी लेता है। और ज़मीन को क्यों रखा, करार के लिए, आपकी फसलों के पकने पकाने के लिए। सूरत यासीन की आयत 33-36 को खोलिए, वमिन आयात ही, अल्लाह कहते हैं उसकी निशानियों में से है कि एक मुर्दा ज़मीन, कभी गुजरते हो तो वहाँ खुश्क ज़मीन होती है और उसके बाद जब दोबारा गुजरते हो तो वहाँ सब्जा आ चुका होता है। क्या तुम्हें अलबारी की ये चीज़ें नहीं समझ आती, अगर ज़मीन होती और उसमें उगाने की सलाहियत ना होती, हमारे चलने के लिए ज़मीन को खींच के रख दिया, और अगर ये ना होते तो हम क्या करते। तो गोया कि अल्लाह ने ज़मीन से फिर उसकी तख्लीक का काम भी लिया। फिर इसी तरह से आप देखिए कि अल्लाह ताला ने मवेशी बनाए, सूरत नहल की आयत 66 खोलिए, मवेशियों के ज़रिए अल्लाह ने जो काम लिए वो सबको मालूम है, उनसे दूध भी मिलता है, उनके ऊपर सवारी भी करते हैं, उनसे नस्लें भी आगे बढ़ती हैं, कैसे काली भैंस में से दूध को हमने पिछली मिसाल में देखा। और इसी तरह फिर शहद बनाया, शिफाओ लिन्नास, सूरत नहल की आयत 69 खोलकर पूरी शहद की मक्खी का जाकर स्टेटस देख लीजिए, कैसे वो कतरा कतरा जमा करके अल्लाह के दिए हुए रास्तों पे चलती है, इला रब्बिका ज़ुलुला, अल्लाह के रास्तों में निकलती है और फिर इंसानियत को शहद देती है। फिर आप देखिए जो बड़ी मज़े की बात है, मुख्तलिफ किस्म की मखलूकात बनाई है अलबारी ने, मसलन कुछ चलने वाले जानवर, कोई उड़ने वाले, कोई रींगने वाले, कोई दौड़ने वाले, हिरन को देखिए, बकरी को देखिए। उस दिन हम एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे तो मेरे हस्बैंड साथ थे, तो कहने लगे तुम्हें पता कि सांप भी किसी से डरता है, वो जितने गले में सांप को लपेटता है। तो मुझे समझ ना आई, मुझे बचपन से एक मुहावरा सुना हुआ मिल गया, सांप और न्योले की लड़ाई। मैंने कहा न्योला, तो कह रहे आओ दिखाओ, मैंने कहा मैंने नहीं देखना, मुझे घिन आती है, मुझे खौफ आता है। लेकिन हकीकत है सांप का भी जहर जो वो न्योले से, कोबरा सांप जिससे डरता है वो न्योला है, और बिल्कुल देखने में एक बड़ा सा चूहा लग रहा था। तो मैं सोच रही थी कि मालिक तूने तो हक अदा कर दिया, एक एक चीज़ को वैसा बना दिया जैसा बनाने का हक था। तो आप सूरत अलनाम खोल लीजिए, आयत 142 है, इसी तरह आपको उसमें दिखेगा कि अल्लाह की मुख्तलिफ मखलूक़ात हैं, जानवर हैं, परिंदे हैं। सूरत नूर आयत 45 खोल लीजिए, पेट पे चलने वाले जानवर, रींगने वाले रेप्टाइल्स हैं। और इसी तरह आप सूरत गाशिया की खोल लीजिए, आयतें 17-20, तो अल्लाह ताला ने तो ऊँट पे भी गौर व फिक्र आपको करवा दिया। इलाली बिली कई फ़ुलिकत, यह अलबारी के नमूने हैं, किस चीज़ को, किस जानवर को, कितना कैसे होना चाहिए, अल्लाह ताला ने ये सब कुछ बता दिया। और फिर अलबारी का एक और खूबसूरत काम देखिए कि एक ही तरह के जानवर मिलते जुलते पर काम मुख्तलिफ, मसलन आप देखिए घोड़ा, गधा, खच्चर, है ना सिमिलर, कैसे आपस में मिलते जुलते हैं। سورت نحل کی آیت 5 سے 8 کھول لیں، آپ کو یہ تینوں کا فرق مل جائے گا. گھوڑا چلتا ہے لیکن شان سے چلتا ہے، تیز رفتار ہے. گدا بھی بوجھ اٹھاتا ہے، خچر بھی بوجھ اٹھاتا ہے، لیکن گدا آہستہ چلتا ہے. کون ہے یہ؟ آپ گھوڑے پہ بیٹھنا پسند کریں گے؟ گدے پہ بیٹھنا کون پسند کرتا ہے؟ دولہا صاحب کے لیے تو گھوڑا نکل آئے گا اگر گدے پہ دولہا کو بٹھا دیا. یہ کس نے کیا؟ یہ الباری کا تحفہ ہے. اس کو پتا تھا کہ میرے بندوں کی مختلف قسم کی ضرورتیں ہیں، ان کو مختلف قسم کے کام کروانے ہیں. اگر سارے گھوڑے ہوتے، سارے گدھے ہوتے، سارے خچر ہوتے، سارے اونٹ ہوتے، دنیا نہیں چلتی. یہ الباری نے اتنی ورائٹی دے دی آپ کو مجھے، اور پھر اس کے بعد تو آپ دیکھیے اور کتنا کچھ ہے اس کے اندر. اگر آپ کائنات کی ساری چیزوں پہ اگر غور و فکر کریں، سورج ہیں، چاند ہیں، ستارے ہیں، کیا دل دماغ ہمارا بند نہیں ہوتا اپنے مالک کے بارے میں سوچ کر؟ کیا اس کے بارے میں سمجھ کر، اس کے بارے میں تفکر کر کے آپ کا میرا دل کم نہیں ہوتا؟ آپ سوچئے کہ جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہمیں، ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. دنیا سے جانے کے وقت قریب آ گئے لیکن لوگوں کو ابھی تک الباری کے بارے میں پتا نہ چلا. یاد رکھیے کہ قرآن پاک میں لفظ الباری صرف ایک ہی دفعہ ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر باری لفظ دیکھیں تو وہ مختلف فارم میں آپ کو مل جاتا ہے، اور سورت حشر کی آیت 24 ہے. تو اس میں مین چیز کے خلاصہ کرتے ہیں، ایجاد کرنے والا، اختراع کرنے والا، موجد، ٹھیک ٹھیک بنانے والا، اور بغیر مادے کے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانے والا. آپ اس کو بگ بینگ کہیں، آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیجئے، لیکن وہ بنا گیا. الباری میں ایجاد کا لفظ ہے، کسی سابقہ مثال کے بغیر. ہم نقل مارتے ہیں، یہ ڈیزائن دینا ذرا میں بھی بنوا لوں، یہ درزی کو دے دوں. اچھا یہ کھانا کیسے بنایا تھا؟ آپ ویڈیوز دیکھ دیکھ کے کھانے بنا کر اپنے نمبر بنوائیں. الباری کو ایسی کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کا یہ کمال ہے کہ اس نے کائنات کی تمام چیزیں اس طرح پیدا کی کہ کسی چیز کا بھی کوئی نمونہ پہلے سے موجود نہ تھا. امیجن تو کریں، پتہ ہی نہیں تھا ہاتھ کیسا ہوتا ہے، ناک کیسا ہے. آپ دیکھیے کہ پھل بنائے، آم کیسا ہونا چاہیے، سیب کیسا ہو، کون سا پھل بڑا ہو، ویسے تربوز بڑے ہوں، آم چھوٹے ہوں، پھر کس کو درخت پہ لگانا ہے، کس کو بیل پھل کا، کچھ پتہ ہی نہیں. ہم تو کہتے ہیں ہمارا دماغ نہیں چلتا، کچھ کیا ہوا دکھا دیں تو ہم کر دیں گے. یہی کیا بات ہے، الباری کو کوئی سیمپل نہیں چاہیے. اور پھر ہر چیز کی ذات اور اختراع اس کی ہے. پھر اسی طرح اگر آپ اصطلاحی معنی دیکھیں، یعنی ڈکشنری سے اوپر اٹھ کر تھوڑا سا آپ اسلامک ٹرمنالوجی میں دیکھیے، تو برآ اصل معنی ہوتے ہیں جدا کرنا، چاک کرنا، پھاڑ کر الگ کرنا. خالق کے لیے باری کا لفظ اس معنی میں استعمال کیا گیا کہ وہ اپنے سوچے ہوئے نقشے کو نافذ کرتا ہے، اور اس چیز کو جس کا نقشہ اس نے سوچا ہے. یہ نہیں کہ سیمپل کچھ اور تھا اور بن کچھ اور گیا. یہ بھی بڑے مسئلے ہیں، بلڈرز کے ساتھ لوگ سر کھپائی کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے دکھایا کچھ اور تھا، کہا کچھ اور تھا، پیسے یہ کہہ کر دیے، اب دیکھیے آپ نے ہمیں کیا دیا. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے، عدم سے نکال کر وجود میں لاتے ہیں. بالکل مثال صرف ہے، حالانکہ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، لیکن صرف ہماری چھوٹی سی عقل میں بات لانے کے لیے کہ انجینئر نے عمارت کا جو نقشہ ذہن میں یا کاغذوں میں بنایا تھا، اس کے مطابق ٹھیک ناپ تول کر کے زمین پر خط کشی کرتا ہے، پھر بنیادیں کھودتا ہے، پھر دیواریں اٹھاتا ہے، اور تعمیر کے سارے عملی مراحل طے کر دیتا ہے.